जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर सारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Bolo Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Gopal Jai Jai
His Divine Grace Abhay Charanarabindh Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrind Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Shri Shri Radha Gokula Anand Ki Jai Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai Shri Shri Jagannath Baladev Subhadra Maya Ki Jai Granth Raj Shri Mad Bhagavatam Ki Jai Shri Vrindavan Dham Ki Jai Yuga Dharma Harinam Sankirtan Ki Jai Nitai Gaur Premanande Samaveta Bhakta Vrind Ki Jai Samaveta Bhakta Vrind Ki Jai Samaveta Bhakta Vrind Ki Jai Shri Shri Guru Gauranga Ki Jai Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kada Mahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatam Aham Vande Shri Guru Dinatarnam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Svarupakam Bhakta Avataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam Aradhyo Bhagavan Vrajeshatamayas Tathama Vrindavanam Ramya Kachidupasana Vrajavadhu Vargenaya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumartho Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatradarahana Paraha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. तो पिछले दो तीन दिनों से युगल गीत श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के 35वें अध्याय की चर्चा चल रही है जब श्री कृष्ण गौओं को साथ में लेकर वन में प्रवेश करते हैं वो बांसुरी बजाते हैं और गोपियों का मन उनके पीछे पीछे भागता है तम अनुद्रुतः चेतसः और इस तरह गोपियां श्री कृष्ण से दूर रह के भी श्री कृष्ण के सानिध्य में रहती हैं अपनी भावना में अपने हृदय में और शारीरिक दूरी होने के कारण वो एक विरह की भावना बहुत तीव्र होती है और इस विरह अनल को का शमन करने के लिए वो ये युगल गीत गाती हैं, जिसमें श्री कृष्ण के विविध लीला गुण आदि के बारे में वो वर्णन करती हैं। युगल गीत के दो श्लोकों में, पहले दो श्लोकों में, दूसरे और तीसरे क्रमांक श्लोक में वो कह चुके हैं कि कैसे श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, अपने बाएं तरफ के कपोल को, बाएं बाहों को स्पर्श करके वो तरह तरह के ताल और राग आदि की ध्वनि प्रकट कराते हैं, और इसके कारण देव देवियां भी जो अपने हवाई जहाज में उड़ रहे होते हैं वो भी बहुत प्रभावित हो जाते हैं। फिर चौथे और पांचवें श्लोक में यहाँ गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जिनका जिनकी हल्की सी मुस्कान जो है वो मोतियों की या एक रत्नों की माला के समान सुंदर है, और जिनके वक्षस्थल पर स्वर्ण रंग का चिन्ह है लक्ष्मी देवी का, वो बांसुरी जब बजाते हैं तो वन के अंदर जितने भी गाय हैं, बैल हैं, हिरण हिरणियां हैं, वो सब ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और जो भी वो कर रहे होते हैं उसको उसी क्षण तत्क्षण बंद कर देते हैं। हम जब बच्चे थे तो हमें खेल खेला करते थे, अचानक हम लोग एक बच्चा दूसरे बच्चे को अचानक कहेगा स्टैच्यू, यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, स्टैच्यू कहते हैं, फिर वो लड़का जो है वैसे का वैसे खड़ा रह जाएगा। तो ये भगवान की बांसुरी वैसे थी, बांसुरी जैसे बजी स्टैच्यू, सभी लोग चाहे वो गाय हो, बैल हो, हिरण हो, हिरणी हो, सब कोई स्टैच्यू, प्रतिमा की तरह या लिखित चित्र की तरह वो बिल्कुल स्थिर हो जाते थे। तो ये गोपियां अपने अंतःकरण के दृश्य में देख रही हैं, और साथ साथ में अब सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गोपियां उस दृश्य को देख रही हैं कि श्री कृष्ण ने अपने आप को तरह तरह के वस्तुओं से सुसज्जित किया है, और ऐसे अलंकृत अवस्था में वो वन में प्रस्थान कर रहे हैं। तो कैसे अलंकार को उन्होंने स्वीकार किए हैं, बरहिण स्तबक, बरहिण स्तबक मतलब मोरपंख अपने बालों में रखा है उन्होंने, धातु, तरह तरह के रंगीन धातु मिलते हैं वृंदावन की मिट्टी में, और उनको फिर वो अपने शरीर में लगाते थे और इससे उनकी शोभा बढ़ती थी, ऐसे उनका सौंदर्य बढ़ाने के लिए वो करते थे। परंतु वास्तव में श्री कृष्ण अनन्य सिद्धम है। अनन्य सिद्धम का मतलब है कि उनको और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है अपना सौंदर्य, अपने गुण बढ़ाने के लिए, अपने आप में वो पर्याप्त हैं, बल्कि जो भी आभूषण इत्यादि हैं उनका सौंदर्य बढ़ता है श्री कृष्ण के शरीर पर रहने से। तो लेकिन फिर भी श्री कृष्ण ये सब रंगीन धातुओं को अपने शरीर पे लगाते थे, पलाशैर, तरह तरह के जो पत्र हैं वो उनसे भी अपने आप को सुशोभित करते थे, कभी बाल में डाल दिए, कभी कान के पीछे डाल दिया, फूलों को भी कर्णिकार, कभी दोनों कानों के पीछे, कभी एक कान के पीछे, कभी बाल में, अलग अलग जगह से। बद्ध मल्ल परिहर विडम्बहा, मल्ल जो होते हैं कुश्तीबाज, उनकी तरह है उन्होंने अपना वेश बना लिया। जिस प्रकार से मल्ल भी अपने आप को सुशोभित करते हैं वैसे श्री कृष्ण ने अपने आप को सुशोभित किया, परंतु हाँ मल्ल से कहीं ज्यादा सुंदर दिखते थे श्री कृष्ण, मल्ल जो दिखने में होते हैं जो पहलवान होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण इस समय केवल 9 वर्ष के थे। उनका शरीर बड़ा कोमल था, नाजुक था दिखने में तो कम से कम। ये नाजुक और कोमल शरीर बड़े बड़े असुरों को केवल स्पर्श मात्र से विनाश कर सकता था, ये दूसरी बात है, लेकिन दिखने में तो उनका शरीर सदैव कोमल दिखता था। तो यहाँ गोपियां कहती है, बद्ध मल्ल परिभर विडम्बह, नकल करते थे ऐसे मल्ल की। अब हम पहले भी कह चुके हैं कि इन श्लोकों का संबंध पूर्व कई अन्य गीतों से भी है, और वेणु गीत के अर्थात 21वें अध्याय के 8वें श्लोक में गोपियां फिर से कहती हैं, चूत प्रवाल बरह सबकोत्पलाब्ज मालानुप्रिक्त परिधान विचित्र वेशो मध्ये विरे जतुरलं पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमानौ। चूत प्रवाल, चूत मतलब आम का वृक्ष और प्रवाल मतलब जो पल्लव होते हैं, तो आम के वृक्ष के पल्लवों को से अपने अपने आम को सुसज्जित करते थे। बरह स्तबक मतलब मोर पंख, उत्पलाब्ज उत्पल मतलब एक तरह का कमल होता है, और अब जब भी दूसरे तरह का कमल होता है, तरह तरह के कमल होते हैं, उत्पल अब्ज सरोज जितने भी अलग अलग नाम है, ये अलग अलग तरह के कमल होते हैं। मालानुप्रिक्त परिधान विचित्र वेशो, माला माला अनुप्रिक्त तो तरह तरह के माला, फूलों के माला उन्होंने पहनी हुई थी। परिधान विचित्र वेशो और उनके जो वेश हैं वो बड़े सुंदर लगते थे, तरह तरह के विविध प्रकार के उनके रंग बिरंगी वेश होते थे, ऐसा नहीं कि एक ही रंग का वो पहनते थे। उनकी धोती तो पीतांबर कहलाती है, पीत रंग की, स्वर्ण रंग की, लेकिन और जो भी ऊपर अपने सर में कभी धारण करते थे, कभी कंधे पे, कभी कमर पे, तो ऐसे रंग बिरंगे अलग अलग रंगीन वस्त्र श्री कृष्ण धारण किया करते थे। मध्ये विरे जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम, और वो ऐसे ग्वालों के बीच में और गौओं के बीच में चमक रहे हैं, प्रज्वलित रूप से दिखाई पड़ रहे हैं श्री कृष्ण। रंगे यथा नटवरो कुछ गाय मानो, ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे मानो कि मंच पे, रंग पे कोई नट खड़ा है और नृत्य कर रहा है। तो कभी कभी नट नृत्य करता है और कभी कभी गायमानो कभी गीत गाता है, तो ऐसा दृश्य देख रही हैं गोपियां वेणु गीत में। और साथ साथ में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय में मथुरा की नारियां श्री कृष्ण के बारे में वर्णन करती हैं। मथुरा की नहीं ठीक, वो वैसे यज्ञ पत्नियां थीं, ब्राह्मणों की पत्नियां। ब्राह्मण जो पति हैं वो तो यज्ञ में व्यस्त थे, स्वाहा स्वाहा करते रह गए, और इनकी पत्नियां जो हैं वो श्री कृष्ण का दर्शन कर रही थी। ये श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है और श्रीमद् भागवत के सबसे सुंदर श्लोकों में से एक माना जाता है। जैसे बरहा पीडम श्लोक है, उसी प्रकार से ये भी एक श्लोक है। श्यामं हिरण्य परिधिं वनमाल्य बरह धातु प्रवाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्तमितरेण धुनानमब्जम् कर्णोत्पलालक कपोल मुखाब्ज हासम्। तो जो दृश्य यज्ञ पत्नियां देख रही हैं वो वर्णन कर रही हैं, शुकदेव गोस्वामी जैसे है वैसे कहते हैं। श्यामम सांवले रंग के हैं श्री कृष्ण, हिरण्य परिधिम, मतलब उनके वस्त्र स्वर्ण रंग के हैं। देखिए आजकल दूरदर्शन आदि के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से हर चीज का आंखों देखा हाल दिखाई पड़ता है ना। जो भी कुछ दुनिया में चल रहा है, चाहे दंगा हो रहा हो, जब इस बार इंग्लैंड में दंगे हो रहे थे तो सारे पत्रकार अपने कैमरे लेकर पीछे पीछे भाग रहे थे, जान को खतरे में डाल के, क्यों? आंखों देखा हाल सब कुछ है कि कैसे दुकानों को जला रहे हैं, कैसे गाड़ियों को जला रहे हैं, कैसे वहां मारपीट हो रही है, हर चीज में आंखों देखा हाल चाहते हैं। यह श्रीमद् भागवत भी सबसे श्रेष्ठ आंखों देखा हाल है। जैसे जैसे गोपियां देखती हैं, जैसे जैसे मथुरा की नारियां देखती हैं, जैसे जैसे यज्ञ पत्नियां देखती हैं, वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी आंखों देखा हाल वर्णन करते हैं। और हमें ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे नहीं कि ये भूतकाल में हो चुका, वर्तमान क्रिया में समझना चाहिए कि अब भी हो रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं ये सतत चलती रहती हैं, कभी बंद नहीं होती हैं। चाहे कभी प्रकट रूप में वो हमारे सामने दर्शित हो जाएं या अप्रकट रूप में, परंतु जिस रूप का वर्णन यहाँ यज्ञ पत्नियां करती हैं वो भगवान का नित्य रूप है, सदैव प्रकाशित रहता है उनके धाम में, और कृपा करके वो यहां भी उसी रूप को दर्शाते हैं हम सबके उद्धार के लिए। हिरण्य परिधिम वन माल्य बरह, गले में वन माला है और साथ साथ में मोर पंख है सर में। धातु प्रवाल, फिर से वही बात, धातु और प्रवाल मतलब जो पल्लव होते हैं आम के वृक्ष के आदि, वो लगाए हुए पहने हुए हैं। नट वेशम अनुव्रताम से, नटवर फिर सबसे अच्छे नृत्य करने वाले वो व्यक्ति हैं। विन्यस्त हस्तम इतरेण धुनानम अब्जम, और उन्होंने अपना हाथ जो है अपने मित्र के कंधे पर रखा हुआ है और अपनी उंगलियों में एक अब्ज कमल पुष्प ऐसे घुमा रहे हैं। तो ऐसे खड़े हैं श्री कृष्ण, एक और ऐसे और दूसरा ऐसे घुमा रहे हैं, खड़े हैं। हमारे सिनेमा के अभिनेता नकल करने का प्रयास करते हैं कभी, लेकिन श्री कृष्ण का सामना कौन कर सकता है? जैसे कल बता रहे थे, सब विकृत प्रतिबिंब है, ये मिट्टी के शरीर में क्या सौंदर्य और कब तक ये रहेगा? आज जो सुंदर है कल उसकी दशा क्या होगी? लेकिन कृष्ण सदैव सुंदर रहते हैं, नित्य नवनवायमान ताजे रहते हैं। नव यौवनम च पुरुषम पुराणम पुराण पुरुषम, हालांकि सबसे वृद्ध व्यक्ति है वो आयु की दृष्टि से वरिष्ठ है सबसे, परंतु दिखने में बिल्कुल युवक दिखते हैं, 15 या 16 साल के तरुण दिखाई पड़ते हैं, किशोर अवस्था उनकी नित्य अवस्था है। तो खैर, फिर ऐसे घुमा रहे हैं। कर्णोत्पल अलक कपोल, कर्ण उत्पल, कर्णों में उत्पल फूल रखा हुआ है, कमल का फूल। अलक कपोल, और उनके बाल जो हैं जो आके कपोल पे गाल पे दिखाई पड़ रहे हैं। अब जहासम, और उनके मुख पे, उनके सुंदर मुख पे एक हल्की सी मुस्कान है। तो इन श्लोकों का संबंध है, तो ये गोपियां ही कह चुकी हैं पहले, तो इन्हीं वर्णनों को वो अब याद कर रही हैं। तो कृष्ण के सुंदर वेश का और उनके सौंदर्य का वर्णन यहाँ पे है। करहचित सबल आलिस गोपैर, और फिर वो अपने गोपियों के साथ में, कभी कभी गोपों के साथ में, सगोप और साथ साथ सब बल बलराम के साथ में, गाह समाह व्यति यत्र मुकुंदह, फिर गायों को भी साथ में लेते हैं, बलराम जी और ग्वाल बाल मित्र भी उनके साथ में रहते हैं, और दोनों को वो आगे बढ़ाते हुए मुकुंद या श्री कृष्ण आगे बढ़ते हैं, ऐसा वर्णन है। लेकिन इस बांसुरी के वदन का क्या असर पड़ता है? हम पहले भी कह चुके हैं कि युगल गीत के गोपिका युगल गीत के पहले श्लोक में, हर जोड़ी के पहले श्लोक में कृष्ण लीला या कृष्ण रूप आदि का वर्णन है, और दूसरे श्लोक में इस लीला का या इस रूप का प्रभाव कैसे पड़ता है अन्यों के ऊपर, उसका वर्णन है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि नदियों के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। गोपियां एक दूसरे से कह रही हैं कि अरे हम तो मनुष्य वर्ग के हैं, लेकिन ये देखो नदियां हैं, ये चेतन नहीं है नदियां, ये तो जल है, जल चेतन नहीं होता, ये जल तो बहता है, इसमें कोई जान नहीं होती, लेकिन फिर भी जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो इन नदियों के ऊपर क्या परिणाम हो रहा है जरा देखो तो। अर्थात वृंदा ब्रज भूमि में भी कई नदियां हैं, जैसे कि कालिंदी या यमुना, फिर सरस्वती है, और तरह तरह के जलाशय हैं जैसे कि मानसी गंगा आदि। तो जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो यहाँ जल में क्या परिवर्तन होता है? गोपियां कहती हैं तरहि गाह समाहवयति यत्र मुकुंदः, यत्र जब ऐसे मुकुंद करते हैं तरहि उस समय भग्न गतयः सरितो वै, उनकी जो गति है वो भग्न हो जाती है, मग्न वो टूट जाती है, और तरह तरह के भंवर वगैरह आने लगते हैं, ऐसे गोपी गीत में वर्णन करते हैं गोपियां। फिर से गोपी गीत में हम आते हैं, गोपी गीत के 15वें श्लोक में गोपियां कहती हैं नद्यस्तदुपधार्य मुकुंद गीतम आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा आलिंगन स्थगित मूर्मि भुजैर्मुरारेर गृणन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। गोपियां कहती हैं नद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुंद गीतम, मुकुंद का गीत, वेणु का गीत उपधार्य जब श्रवण करती हैं नद्यस्तदा, उस समय नदियों के क्या क्या होता है? आवर्त लक्षित मतलब भंवर हो जाता है, पानी ऐसे गोल 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 घूमने लगता है। अब भंवर जानते हैं ना, ऐसे भंवर कभी कभी खतरनाक होता है, आदमी को खींच के भी ले जा सकता है नीचे जल में। तो ऐसे नदी के प्रवाह में परिवर्तन हो गया और भंवर हो गए, ऐसे गोपियां कह रही हैं। मनोभव भग्न वेगाह, तो जो नदी का वेग है वो टूट गया, नदी का वेग है वो सीधे चलते रहता है, बहते रहता है, लेकिन यहाँ ये भंवर बन गए। आलिंगन स्थगितम ऊर्मि भुजैर मुरारीर, और ऐसे ये जो उनके लहर हैं वो भुजा जैसे बन गई, और मुकुंद श्री कृष्ण के चरण कमलों को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ी। घृणन्ति पाद युगलम, तो भगवान श्री कृष्ण के पद कमलों को आलिंगन करने के लिए मानो ये लहरें भुजाएं बनकर सामने आ रही थीं। कमलोपहाराः, और कमल पुष्पों को वो अर्पण कर रही थीं, ऐसे प्रतीत हो रहा था। ये गोपियों का भाव है, गोपियों की दृष्टि है ऐसे, तो इसी बात को वो याद कर रही हैं। तरहि भग्न गतयः सरितो वै, ऐसे गति नदी की टूट जाती है। तत्पदाम्बुज रजो निलनीतम, और वो आशा करती हैं, वो रुक जाता है, जल रुक जाता है नदी का, और फिर ये जल प्रतीक्षा करता है या आशा करता है कि श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूली हवा के साथ हम तक पहुंच जाए। स्पृह यातिर वयम इव बाहु पुण्याः प्रेमवेपित, प्रेमवेपित मतलब ऐसे प्रेम के कारण प्रेमावेश में आकर उनका प्रवाह ही रुक जाता है, और फिर वो केवल अपने लहरों से ऐसे स्थगित रह जाते हैं, ऐसे रुक के रह जाते हैं। और गोपियां कहती हैं कि पुण्य इव बाहु पुण्य, कि इनका भी इतना पुण्य नहीं है हमारे जैसे, हमारा भी पुण्य नहीं है इन लहरों का भी ऐसा पुण्य नहीं है, इसलिए बस वो खड़े होकर रह जाते हैं, श्री कृष्ण का स्पर्श नहीं कर पाते हैं। तैसे गोपियों का भाव है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि जब श्री कृष्ण गवों को लेकर नदियों तक पहुंच जाते हैं तो वो गवों को बुलाना चाहते हैं कि सबसे पहले आके पानी पियो। हमारे गोकुल धाम में भी रोज भक्त गायों को और बैलों को चराने चरने के लिए ले जाते हैं, और एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बाहर जाके जो ताजा जल है, झरने आदि से आने वाला जल, उसका पान कराने के लिए। और बड़े आनंद से गाय और बैल जल पान करते हैं, तो पानी पिलाना आवश्यक होता है उनको उस समय। तो श्री कृष्ण तो गोपाल हैं, अच्छी तरह से जानते हैं कैसे गवों को हृष्ट पुष्ट रखना है, उनका भरण पोषण करना चाहिए, कैसे ये श्री कृष्ण को पता है। तो वह नदियों के पास पहुंचने से ही श्री कृष्ण अपने बलराम जी के साथ और उन गोपों के साथ गवों को नाम से बुलाते हैं, हे कालिंदी, हे गंगा, हे सरस्वती, ऐसे अनेक नाम है गवों के। तो ये नाम गवों को तो हैं, लेकिन नदियों के भी हैं। तो जब ये नदी ये नाम सुनती है तो सोचती है कृष्ण हमें बुला रहे हैं, और वो बड़े उत्तेजित हो जाती हैं, सोचती हाँ अभी कृष्ण हमें बुला रहे हैं, अभी आके हमारे जल में क्रीड़ा करेंगे, स्नान करेंगे, हम उनकी सेवा कर पाएंगे। तो ऐसे बिल्कुल उत्तेजित होकर वो सोचती हैं कि अहो सौभाग्य हमारा है, और ऐसे अवस्था में अपने वो प्रेमावेश में आ जाते हैं। प्रेमावेश में आके उनका जो प्रवाह जो है जल का, वो बंद हो जाता है और जैसे के वैसे वहीं पर खड़े हो जाते हैं। तो ये है नदियों की दशा। तो गोपियां कहती हैं, चेतन व्यक्तियों की बात तो दूर है, यहां जड़ वस्तु जैसे जल, नदी का जल, ये भी देखो कैसे माधुर्य रस में आकर्षित होकर आगे बढ़ रहा है। तो यदि हम श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित होकर जा रहे हैं तो इसमें हमारा दोष क्या है? हम तो चेतन हैं, हम मनुष्य वर्ग के हैं, हम कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं तो लोग हमारे ऊपर आरोप देते हैं, लगाते हैं, लेकिन ये नदियां भी आकर्षित हो रही हैं तो दोष हमारा तो नहीं है। कृष्ण है ही ऐसे सर्व आकर्षक, नदी के जल को भी आकर्षित करती हैं। जो दूर रहने वाले नदियां थीं, वो समझ गए कि श्री कृष्ण अब गवों के पास वाले नदियों में जल पिलाने गए हैं गवों को, तो वो भी दूर से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कृष्ण हमारे पास भी आएंगे। तो ये भाव गोपियों का यहाँ पे है। तो ऐसे सब चीजें कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति सोच सकता है कि ये सब क्या है, काल्पनिक चीजें हैं, केवल कोई भावुक चीजें हैं। भाव है लेकिन भावुक नहीं है, ये सबसे ऊंचा भाव है। केवल जिन्होंने अनेक जन्मों से तपस्या की है, जिन्होंने सारे वैदिक ज्ञान को प्राप्त किया है, जिन्होंने सारे संस्कार प्राप्त किए अच्छे अच्छे बस, और जिन्होंने साधन भजन करके श्री कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर चुके हैं, जो बस वही मात्र ऐसे भाव को स्वीकार कर सकते हैं। जिनका बिल्कुल कोई भाव नहीं है वो सोचेंगे कि ये सब भावुकता है, ये काल्पनिक है। लेकिन जो रसिक भक्त होते हैं, और हमें एक दिन तो ऐसे रसिक होने का प्रयास करना है, हमारा जीवन का लक्ष्य है कि हम भी ऐसे शुद्ध भक्त एक दिन बन जाएंगे। तो कम से कम हम रसिक नहीं हैं, लेकिन ऐसे सबसे रसिक भक्त हैं गोपियां वृंदावन की। तो उनके वर्णन से कम हम समझ सकते हैं कि कृष्ण के समय वृंदावन में क्या होता था, कृष्ण का सर्व आकर्षक होने का क्या मतलब था। और फिर आगे गोपियां कहती हैं कि ठीक है, ये तो नदियां हैं, हम समझते हैं कि नदियां जो हैं वो ऊपर के लोग से आके देवी देवता बनते हैं, जैसे गंगा देवी है, वो अधिष्ठाता देवी है गंगा नदी की, सरस्वती देवी है, यमुना देवी है, सब गोलोक वृंदावन से आए हैं, लेकिन अब इन वृक्षों का तो देखें, इन पेड़ पौधे गुल्म लताओं की तो दशा देखें, इनकी तो योनि नीच योनि है। सबसे नीच योनि मानी जाए तो पेड़ पौधों की होती है। वो चेतन तो है परंतु स्थिर है, स्थावर है, हिलते नहीं हैं, चल नहीं सकते इधर उधर, इसलिए सबसे नीच योनि माने जाते हैं। चेतना इतने विकसित नहीं होती है उनके अंदर, तो फिर भी इनके ऊपर क्या असर पड़ा है, जरा हम देख तो लेते हैं। तो गोपिया फिर आगे वर्णन करती है, वो कहती है कि कृष्ण जब आगे चलते रहते हैं वन के अंदर तो बड़े सुंदर दिखते हैं, और उनके ग्वाल बाल मित्र उनका गुणगान करते रहते हैं। ऐसे ऐश्वर्यों से युक्त श्री कृष्ण आदि पुरुष के समान प्रतीत होते हैं। आदि पुरुष अर्थात भगवान हैं, वो भगवान तो उनके समान प्रतीत होने की बात नहीं है, परंतु वृंदावन में तो कृष्ण भगवान की तरह नहीं है ना। वृंदावन में तो कृष्ण केवल ग्वाल बाल हैं। तो गोपियां देख रही हैं वो दृश्य, घिरे हुए हैं श्री कृष्ण ग्वाल बालों से जो सतत उनका गुणगान कर रहे हैं और अपने ऐश्वर्यों को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो परम सत्य भगवान ही हैं, आदि पुरुष हैं। और फिर आगे चलते चलते भगवान जब चले जाते हैं तो वो देखते हैं कि गाय इधर उधर भटक के चले गए हैं, तो उनको बांसुरी से बुलाते हैं, बांसुरी की ध्वनि बजाते हैं। बांसुरी की ध्वनि बजाकर वो उनको वापस बुलाते हैं कि इधर दूर नहीं जाना, इधर पास में ही रहना, आओ। यह आजकल कैसे चिल्लाना पड़ता है हमारे गोकुलधाम में भक्तों को पता है, गाय बैलों को कभी बुलाना पड़ता है तो बहुत कुछ चिल्लाना पड़ता है, और वो चिल्लाना कभी कभी इतना मधुर नहीं होता, ऐसे गीत के समान नहीं होता है। कभी कभी बैलों को केवल ध्वनि से इशारा देना पड़ता है, तो तरह तरह के आवाज करते हैं। कैसे आवाज करते हैं बैल के लिए बताओगे? नहीं बता रहे, बैल होंगे तो आएंगे सबके सामने मंदिर में, ऐसे आवाजें नहीं करते। लेकिन श्री कृष्ण कैसे बुलाते हैं गाय बैलों को? बांसुरी से, बांसुरी से बांसुरी बजाते हैं, और गाय समझते हैं कि मुझे बुलाया है। एक तरह बांसुरी बजाई तो एक गाय समझते मुझे बुला रहे हैं, दूसरी तरह बजाई तो दूसरी गाय समझते मुझे बुलाया है। तो कभी कभी श्री कृष्ण उन गायों के नामों का उच्चारण करके बुलाया करते थे, कभी कभी बांसुरी के द्वारा, और ये आगे चल के हम देखने वाले हैं, कल देखेंगे। तो ऐसे उनको वापस बुला लेते हैं। ये सब गोपियां देख रही हैं और गा रही हैं युगल गीत के दौरान। और फिर साथ साथ में जब गोपियों कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं पेड़ पौधे, तो उनकी दशा क्या होती है? तुरंत तरह तरह के रंगीन और सुगंधित फूलों से वो वृक्ष भर जाते हैं, खिल उठते हैं, और फिर फल आदि भर आते हैं वृक्षों के ऊपर अचानक, और इतने सुंदर दिखते हैं ये वृक्ष, और इतने सारे फलों के कारण वो झुकने लगते हैं, मानो कि वो श्री कृष्ण बलराम को प्रणाम कर रहे हैं। परंतु ये भाव के लक्षण है, और इस तरह से वो स्वागत करती हैं कृष्ण बलराम को झुककर। फलवंत वृक्ष अर गुणवंत जन नम्रता शैताहार स्वभाव अनुक्षण, चैतन्य महाप्रभु चैतन्य भागवत में कहते हैं कि एक फलवंत वृक्ष, जिस वृक्ष में बहुत सारे फल हैं, वो भी झुक जाता है। जिस तरह से एक गुणवान व्यक्ति भी नम्र होता है, वो झुकना जानता है, नम्रता से तहार स्वभाव अनुक्षण, तो दोनों ही नम्र होते हैं। तो केवल एक गुणवंत व्यक्ति, सद्गुणों से संपन्न व्यक्ति ही एक ऐसे फलों से भरे हुए वृक्ष के समान वो नम्र हो सकता है। जो सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं है, कुसंस्कृत है समझ लीजिए, तो वो व्यक्ति कभी झुकना नहीं जानता। तो हमें इन पेड़ों से भी ऐसे सीखना चाहिए। तो चैतन्य महापुरुष देख रहे हैं बांसुरी बजाते बजाते इन पेड़ों के ऊपर क्या दिशा हो रही है। अब हाँ, हालांकि गोपियां ये कहना चाहती हैं कि ये तो केवल पेड़ों की योनि है, उनका भाव ऐसे है, लेकिन वास्तव में हर एक वृक्ष, हर एक गुल्म लता वृंदावन में क्या है, कल्प वृक्ष है, ये कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं है। हर एक वृक्ष यहाँ कल्प वृक्ष है, हर एक वस्तु, हर एक घास का तिनका, हवा पानी सब कुछ गोलोक वृंदावन में चेतन है। यहाँ ऐसे कल्प वृक्ष नहीं दिखाई पड़ते, फिर भी साधारण जो वृक्ष होते हैं, जो बहुत लाभदायक होते हैं, उनको भी कल्प वृक्ष कहते हैं। जैसे नारियल के वृक्ष को कल्प वृक्ष कहते हैं, क्योंकि नारियल के वृक्ष से अनेक वस्तुएं हमें मिलती हैं जो बहुत लाभदायक होती हैं। नारियल के वृक्ष का हर एक भाग मनुष्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। लेकिन यदि वास्तव में कोई कल्प वृक्ष यहाँ होता तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यह क्या दशा हो जाती है। यहाँ पे यहाँ है तो सभी लोभी, फिर क्या हो जाता। एक बार एक व्यक्ति था, यात्री, यात्रा जो है लंबी करके एक बार रात हो गई थी, सोचा चलो इस पेड़ के नीचे विश्राम कर लें। तो जैसे ही वो बैठा वहां वृक्ष के नीचे, सोचने लगा कि बहुत भूख लगी है, काश कुछ अच्छा भोजन आ जाता। और अहो आश्चर्यम, क्या हुआ, सामने सुंदर दावत आ गया, तरह तरह के पकवान, बस सुंदर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन सामने आ गए। अरे ये कैसे हो गया, हमने केवल सोचा और आ गया, ठीक है बाद में सोचेंगे खाएंगे, पहले तो खा लिया। और फिर सोचने लगे कि बहुत बढ़िया है, अब विश्राम भी करना है, यहाँ उबड़ खाबड़ जमीन है तो विश्राम ठीक से नहीं किया जाता। एक खटिया होती, खटिया नहीं, अच्छा सा पलंग, और उसमें तकिया आदि सब कुछ होता, कितना अच्छा होता। अहो आश्चर्य, क्या हो गया, तकिया आ गया सामने, रेशम के वस्त्र, तकिया, सब कुछ ठीक ठाक आ गया। अरे वाह, तो बहुत अच्छा। तो ऐसे लेट गया, लेटते लेटते फिर ऐसे सोचा, अरे यहाँ तो बहुत अंधकार है, कोई नहीं, यहाँ पे जंगल है, अचानक शेर आके मुझे खा जाए तो क्या होगा। फिर अहो आश्चर्यम, क्या हुआ, शेर आया, खा गया उसका। तो देखिए, भौतिक जगत में भगवान ने जानबूझकर कल्प वृक्ष नहीं दिए हैं। ऐसे कल्प वृक्ष दिए होते तो ये हालत हो गई होती। और आजकल भ्रष्टाचार का युग चल रहा है ना, आजकल तो समाचार पत्र में आप देख ही रहे हैं। तो यदि यहाँ कल्प वृक्ष होते तो बेचारे कल्प वृक्ष थक जाते, क्योंकि मनुष्यों के लोभी व्यक्ति की इच्छाओं की तो कोई सीमा नहीं होती है ना। इसलिए कहावत है कि हर व्यक्ति के सारे दुनिया की आवश्यकता के लिए पृथ्वी या प्रकृति में पर्याप्त साधन है, परंतु एक भी व्यक्ति के लोभ के लिए सारे ब्रह्मांड में साधन नहीं है। तो लोभ ऐसी चीज है। तो जब हम कृष्ण भक्ति में मग्न रहते हैं तो संसार के प्रति आकर्षण नहीं रहता है, फिर हम संतुष्ट रहते हैं। जैसे भगवान ने हमें रखा है, हमारे भाग्य के अनुसार जितना भी हमें सुख दुख मिलता है या ऐश्वर्य मिलता है, उससे हम संतुष्ट रहते हैं और जानते हैं कि सच्चा ऐश्वर्य तो भगवान की भक्ति है और वास्तविक कल्प वृक्ष तो भगवान के चरण कमल हैं। इसलिए ऐसे कल्प वृक्ष के आश्रय को हमें स्वीकार करना चाहिए। और यदि श्री कृष्ण हमारे लिए बहुत दूर हैं तो वैष्णव हैं, वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हम हर रोज सुबह प्रार्थना करते हैं, वांछा कल्पतरु, वैष्णव जो होते हैं वांछा कल्पतरु होते हैं, कल्पतरु मतलब कल्प वृक्ष, तरु मतलब वृक्ष, सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, दया के सागर हैं और पतितों को पावन करते हैं। सभी वैष्णव, सारे ब्रह्मांड के वैष्णव, ऐसे नहीं कि केवल थोड़े वैष्णव, वो नहीं वो नहीं, उसको छोड़कर सारे वैष्णव नहीं, सभी वैष्णव, विशेष करके जो शुद्ध वैष्णव हैं। और वो सबसे बड़ी इच्छा क्या है हमारी, हमारी भक्ति की इच्छा। तो जब हम वैष्णवों के संग में ऐसे सेवक की भावना से रहेंगे, ये जानते हुए कि सारे वैष्णव कल्पतरु हैं, तो हमारे भक्ति की संपूर्ण वांछाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे भावना से यदि हम भक्तों के संग में रहेंगे, ये जानकर कि हम भक्तों के संग पर, वैष्णवों पर निर्भर हैं पूरी तरह से, हम एकांत स्थान में जाकर अकेले में भक्ति नहीं कर सकते हैं, वैष्णवों की कड़ी आवश्यकता है। तो कल्प वृक्ष हमारे बीच में है, तो ऐसे कोई पेड़ वाले कल्प वृक्ष हमें आवश्यकता नहीं है, जब इतने सारे कल्प वृक्ष हैं यहाँ पर। तो खैर, ये पेड़ों की दशा है। जब पेड़ इस प्रकार से झुके हुए हैं और फिर उनके जो लताएं वगैरह हैं वो भी बिल्कुल उत्तेजित हो जाती हैं और बड़े भाव से भावावेश प्रेमावेश में आके भाव विभोर होकर इनसे समस्त वृक्षों से मधु आदि गिरने लगता है। और फिर आगे गोपियां कहती हैं, दर्शनीय तिलको, तिलको मतलब यह केवल तिलक नहीं, परंतु दर्शनीय मतलब श्री कृष्ण, जो दर्शन करने योग्य हैं। श्री कृष्ण के अलावा किसी को देखने का कोई फायदा नहीं है, श्री कृष्ण ही दर्शनीय व्यक्ति हैं। तिलकः का मतलब है सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, देख सुंदर व्यक्तियों में से, या ऐसे व्यक्तियों में से जो कि देखने योग्य हैं, उनमें से श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनका सौंदर्य कुछ निराला ही है। इसलिए मथुरा की नारियां कहती हैं, गोप्यस्तपः किमचरन् यदमुष्य रूपम् लावण्य सारम समोर्ध्वमनन्य सिद्धम् दृग्भिः पिबन्त्य अनुसवाभिनवम् दुरापम् एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य। वो कहती हैं, गोपियों ने किस तरह की तपस्या की होगी, गोप्यः तपः किम अचरन यद अमुष्य किम, इनको प्राप्त करने के लिए, अमुष्य अर्थात कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, इनका संग निरंतर प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कैसी तपस्या की होगी, ऐसे मथुरा की नारियां विचार कर रही हैं। और ये अमुष्यम अर्थात ये कृष्ण के कौन क्या गुण है, लावण्य सारम असमूर्ध्वम अनन्य सिद्धम। लावण्य सारम, लावण्य मतलब सौंदर्य, तो ये सौंदर्य के सार हैं, साथ साथ असमूर्ध्वम, उनके एक समान न कोई है और ऊर्ध्व या उनसे श्रेष्ठ की कोई तो बात ही नहीं है। अनन्य सिद्धम, उनको और किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, अपने आप में ही वो सुंदर हैं, अन्य चीजों को सुंदर बनाते हैं। दृग्भिः पिबन्ति अनुसवा अभिनवम, इस अभिनव रूप को जो कि हमेशा नित्य नवायनमान रखता है, उसको अपनी आंखों से ये गोपियां रोज पिया करती थी। और वास्तव में दुरापम, इस दृश्य को देखना बहुत मुश्किल है, साधारण व्यक्तियों को ऐसा दर्शन नहीं मिलता है। किनका, श्री कृष्ण का, जो कि एकांत धाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य, जो कि ऐश्वर्य सौंदर्य और यश के एकांत धाम है। तो श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसे है। इसलिए गोपियां यह कहती हैं दर्शनीय तिलकः, और ऐसे श्री कृष्ण वनमाला पहने हुए चल रहे हैं बांसुरी बजाते बजाते। वनमाला वैजयंती माला है। वैजयंती माला जैसे हम बता रहे थे पहले भी, पांच रंगों के पांच अलग अलग तरह के फूलों से बनी हुई होती है, और इनके बीच में तुलसी दल और तुलसी के फूल भी होते हैं। तो अब रही बात भंवरों की, तो भंवरे क्या कर रहे होते हैं, दिव्य गंध तुलसी मधुमत्ते ही अलिकुलेर अलघो गीतम अभीष्टम। तो तुलसी के फूलों का सुगंध सूंघ कर ये जो भंवरे हैं वो उन्मत्त जैसे हो जाते हैं और गुनगुनाने लगते हैं एक गीत उनका, क्योंकि वो गंध इतना तीव्र होता है उनके लिए कि उन्मत्त जैसे हो जाते हैं। आप तो जानते हैं कि भंवरों का काम ही है गुनगुनाना, और गुनगुनाते रहते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद बताते हैं कि कोई इसमें एक आपत्ति उठा सकते हैं कि तुलसी के फूलों का तो इतना सुगंध नहीं होता। आपने अनुभव किया होगा तुलसी की सेवा तो आप रोज करते हैं और भगवान को भी अर्पण करते हैं, तुलसी के फूलों का सुगंध इतना कहाँ है कि भंवरे इतने उन्मत्त हो रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि वास्तव में यहाँ पर भी इस भौतिक जगत में प्रातः काल में तुलसी के फूलों का सुगंध थोड़ा बहुत हमें पता चलता है, लेकिन खास करके जो बिल्कुल शुद्ध भक्त होते हैं उनको ऐसे तुलसी के फूलों का सुगंध प्रतीत होता है, वो जान पाते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गोलोक वृंदावन में तुलसी का सुगंध तो इतना तीव्र है कि सब जगह फैल जाता है, परंतु यहाँ भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा वो सुगंध ढका हुआ है और थोड़ा बहुत सुगंध शुद्ध भक्त सूंघ पाते हैं, बाकी लोग नहीं सूंघ पाते हैं। लेकिन वृंदावन में ये भाग्यशाली भंवरे गुनगुनाकर उन्मत्त अवस्था में गुनगुनाने लगते हैं और फिर इन तुलसी के फूलों के वनमाला के पास पास में घूमने लगते हैं और गीत गाते हैं उनका, गुन 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 का गीत होता है। और श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते उस गीत को सुनते हैं और कहते हैं उनसे, अरे वाह सही, मेरा स्वर गलत हो गया था, आपने अपने गीत से स्वर सही कर दिया। जैसे जब कोई गीत गा रहा होता है तो साथ में कोई पेटी बजाता है, कोई तांबूरा बजाता है, तो जिस स्वर में वो गायक गा रहा है उसी स्वर में पेटी या कुछ बजाने वाला भी करता है। कभी कभी गायक गलत भी चले जाए तो पेटी के स्वर से को पकड़ के फिर से वो वापस चले आता है। तो श्री कृष्ण बड़े प्रेम से उन भंवरों से कह रहे हैं कि आपको जो गुनगुन गुनगुन गुन जो आपको जो आपने पकड़ लिया है एक ताल और एक धुन और एक स्वर, उस स्वर के अनुसार मैं चलूंगा, मैं गलत स्वर में था, अब मैं सही स्वर में आ गया। जब हम सुबह जप करने भी बैठते हैं तो ऐसे हम भी भंवरों की गुनगुनाहट गुनगुनाना सुनते हैं ना, कैसे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे हरे, सारे भक्त लोग गुनगुना रहे होते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। तो भंवरों जैसे जो भक्त हैं वो अपने हरे कृष्ण महामंत्र का गीत गा रहे होते हैं उन्मत्त होकर, कृष्ण नाम का रस का पान करते हुए गा रहे हैं। तो इसी प्रकार से ये भंवरे भी ऐसे घूम 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 रहे हैं और साथ में फिर आगे चल के कृष्ण वन के अंदर जाते हैं और भंवरों को देखते हैं, उनके गीत को स्वीकारते हैं और अपनी बांसुरी बजा के जितने भी वहाँ पे प्राणी हैं उनको संबोधन करते हैं अपने बांसुरी के द्वारा। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपनी टीका में कहते हैं कि जिस प्रकार से एक गृहस्थ इस दुनिया में, खास करके जो सुसंस्कृत गृहस्थ होते हैं, जो भक्ति क्या है जानते हैं, वो जब अपने घर से देखते हैं कि हरिनाम संकीर्तन करते हुए भक्त लोग सड़क पे आ रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर अपने घर के बाहर निकलते हैं और फिर वो झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। आज भी ऐसे कहीं कहीं देखा जाता है, सब जगह तो नहीं, आजकल तो सब जगह लोग टीवी देखते हुए बैठते हैं तो किसी को समय भी नहीं कि देखने के लिए क्या हो रहा है, लेकिन कभी कभी लोग आते हैं और झुक जाते हैं। और जहां लोग और सुसंस्कृत होते हैं, मटके में जल लाते हैं, भक्तों के सामने सड़क को धो लेते हैं, कोई रंगोली लगाते हैं, भक्तों को प्रणाम करते हैं, तो उसी प्रकार से जब श्री कृष्ण बांसुरी बजाते बजाते अपने भक्तों के संग आ रहे थे तो उनका नाम संकीर्तन चल रहा था। तो ये पैर जो है वो गृहस्थ वैष्णवों की तरह हैं, जो श्री कृष्ण द्वारा, श्री कृष्ण के नेतृत्व में जो संगीत, ये हरिनाम पार्टी चल रही थी, उसके सामने वो झुके हुए हैं। और यदि ये पेड़ पौधे गृहस्थ वैष्णवों के समान है, तो जो सरोवरों में जो हंस आदि पक्षी हैं वो मुनियों के समान हैं। मुनि कैसे होते हैं, स्थिर एक जगह पर ध्यान में बैठते हैं। तो जब ये पंछियां ये श्री कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो बिल्कुल कृष्ण के पास आके बस रुक जाती हैं। ऐसे वो कहती, वो आंखें बंद करते हैं और मौन व्रत के लेके उस बांसुरी की ध्वनि का चिंतन करती हैं। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसी उपमा देते हैं कि ये पक्षियां जो हैं ये मुनियों के समान हैं और पेड़ पौधे गृहस्थ वैष्णवों के समान हैं। इस तरह से गोपियों का वर्णन यहाँ पे है, सुंदर वर्णन है। जहाँ तक तुलसी की बात है, यदि हमें संशय आए कि तुलसी का इतना महत्व क्यों होता है, तो श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंध में बताया गया है कि जितने भी अन्य सुगंधी पुष्प हैं गोलोक वृंदावन में, वैकुंठ में, और अनेक हैं, जैसे मल्लिका, मालती, नाग, पुन्नाग, केसर, पारिजात, उत्पल इत्यादि, ऐसे अनेक फूल हैं जो बहुत सुगंधित हैं, लेकिन ये सब तुलसी के सामने झुक जाती हैं। तुलसी ने जो तपस्या की उसको मानते हैं, तुलसी के गुणों का गान करती हैं, और वो सोचते हैं कि तुलसी कितनी भाग्यशाली है कि श्री कृष्ण हम सब में से तुलसी को अधिक पसंद करते हैं। यहाँ तक कि लक्ष्मी देवी भी तुलसी के गुणों को जानती हैं, वो गुणगान करती हैं तुलसी देवी का, और वो सोचती हैं कि तुलसी देवी कितनी भाग्यशाली है कि वो सदैव मेरे स्वामी श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित रहती हैं, परंतु मैं श्री कृष्ण के सानिध्य में सदैव नहीं रहती, क्योंकि कर्तव्यबद्ध होकर मुझे मेरे उपासकों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए इधर उधर जाना पड़ता है। तो लक्ष्मी देवी के उपासक बहुत है ना, लक्ष्मी देवी की कृपा चाहने वाले बहुत हैं, और लक्ष्मी देवी को कष्ट होता है, बार बार उनको संतुष्ट करने के लिए जाना पड़ता है। तो लक्ष्मी देवी सोचती हैं कि मुझे तो बार बार जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तुलसी देवी देखो सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित है। तो ये है तुलसी का गुणगान। तो तुलसी का गंध भले हमें नहीं आए, लेकिन हमें जानना चाहिए कि हाँ ये वास्तव में बहुत ही सुगंध है, और श्री कृष्ण तुलसी दल, तुलसी मंजरी और तुलसी फूल को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए ऐसे फूलों की माला में भी बीच बीच में तुलसी दल, मंजरी आदि लगाते हैं। तो ये गोपियों का दृश्य है। तो कल और आगे युगल गीत को बढ़ाते हैं 12वें श्लोक से आगे। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, माइक दीजिए जरा।
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
जैसे वैष्णव के बारे में चर्चा हुई तो इन कलयुग के प्रभाव से या व्यक्तिगत प्रकृति की वजह से सामान्यतः काफी दोष न चाहते हुए भी दिखते हैं कहीं कहीं भक्तों में या वैष्णवों में, तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या व्यवहार रहना चाहिए? क्योंकि अपने जैसे शुद्ध वैष्णव दुर्लभ जैसे ऐसे समझते हैं, तो फिर सबके प्रति हमारा व्यवहार कैसे रहना चाहिए इसके बारे में?
हाँ, यदि वैष्णवों के साथ हमारा व्यवहार ठीक नहीं रहा, वो कल्प वृक्ष तो रहेंगे लेकिन वैसे जैसे वो शेर आके फिर खा जाता है, तो वैष्णव अपराध से भी ऐसे नुकसान होता है। तो जब हम दोष देखते हैं तो ठीक है, देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना है। और यदि हमारी सेवा है उस दोष को ठीक करने के लिए तो हमें करना चाहिए। यदि वो हमारी सेवा नहीं है, यदि वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो फिर हमें नहीं करना चाहिए। और यदि हमारी सेवा न होने के कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं परंतु कष्ट हो रहा है हमें या तो अन्यों को, तो हमें ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जिसकी ये सेवा है, ताकि उनको ठीक करे। आखिर हम सब ठीक होने के लिए तो आए हैं ना। प्रभुपाद जी कहा करते थे कि ये एक हॉस्पिटल के समान है, हमारी संस्था, हमारा मंदिर, जितने भी हमारे मंदिर हैं सब हॉस्पिटल के समान हैं। और भव रोग से पीड़ित सभी लोग आते हैं, ऐसा नहीं है कि सब वैकुंठ से टपक के पड़े हैं सब। तो यदि किसी वैष्णव में कोई दोष दिखाई भी पड़े तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आखिर इतने जन्मों से वो सारा बोझ लेकर आए हैं इस जन्म में, और झट से एक क्षण में तो वो दूर नहीं हो जाएंगे। लेकिन यदि हम हमारी भक्ति के नियमों को अच्छी तरह से पालन करते रहेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे बड़े सावधानी से, तो ये सारे दुर्गुण निकल जाएंगे। तो ये हमें समझना चाहिए और इस भाव से वैष्णवों के बीच में संबंध अच्छे रखने, सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। ये भी एक कला है कैसे वैष्णवों के बीच में रहना। और समस्या तब हो जाती है जब हमारे परिवार वाले वैष्णव बन जाते हैं, फिर वो केवल हमारे पति पत्नी बच्चे माता पिता भाई बहन नहीं रहते हैं, वो वैष्णव रहक बन जाते हैं। तो इसलिए घर में भी संबंधों में सावधानी रखनी चाहिए। अब ये याद रखना चाहिए कि केवल हमारे परिवार के सदस्य नहीं है, ये वैष्णव या वैष्णवी हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ, माइक दीजिए इधर। अच्छा, ठीक।
तो आप जीवन के अनुप्रयास, भक्त लोग संतुष्ट रहते हैं इसके बारे में आप बता रहे थे, भक्त लोग जो परिस्थिति है जो व्यवस्था है उसे संतुष्ट रहते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं सब चीज कर्म के आधारित, जो मिलता है जो मिलना है वही मिलता है, जो जाने वाला वो जाने वाला ही है। इस प्रकार के विचार को हम कई बार सुनते हैं प्रवचन में, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे भक्त के समाज में, हमारे जीवन में हम देख रहे हैं, लेकिन वो प्रयत्न कम नहीं होता। जब चीज जो दिया गया भगवान की कृपा से उसे हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, और प्रयत्न हमारा उससे भी ज़्यादा ही रहता है। अभी थोड़ा पैसा मिल रहा है, थोड़ा कुछ व्यवस्था मिल रहा है, उसे ज़्यादा करने का ही ये प्रयत्न क्यों खत्म नहीं हो रहा है?
रूप गोस्वामी इसको प्रयास कहते हैं ना, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। तो ये चीज़ें भक्ति के लिए हानिकारक हैं। जब हम आवश्यकता से अधिक एकत्र करने का प्रयास करते हैं तो इससे हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। परंतु आधुनिक काल में जीवन शैली कुछ ऐसी विकट सी हो गई है कि सादा जीवन जीना भी आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। चाहते हुए भी आदमी बाध्य है, नहीं कर पाता, ऐसे फंस गया है बुरी तरह से आधुनिक जीवन शैली में, अंदर जाने की इच्छा नहीं है लेकिन खींच लिया जाता है, बाहर नहीं निकल सकता। जैसे एक मक्खी मकड़ी के जाल में अटक जाती है, जितना संघर्ष करती है उतनी सख्ती से बंध जाती है। तो जीवन के संघर्ष का प्रतिकार करने के लिए या उसको रोक टोक करने के लिए, जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं उनको रोकने के लिए व्यक्ति संघर्ष करता है, परंतु ज्ञान नहीं होने के कारण वो केवल संघर्ष करता है और उसका परिणाम ये होता है कि बद्ध अवस्था में वो ज्यादा ही घुसते जाता है। तो कोई निकालने वाला चाहिए उस मक्खी को, मकड़ी के जाल को काट के। तो उसी प्रकार से हमारे गुरुजन हैं जो बताएंगे कि देखो जीवन सरल करो, बुखार कम करो, बुखार को बढ़ाओ नहीं। आधुनिक काल में बुखार को बढ़ाना ही ये प्रगति मानी जाती है। जिसका सबसे ज्यादा बुखार वो सबसे बड़ा व्यक्ति, 1 से 5 डिग्री वाला व्यक्ति अरे इतना बड़ा आदमी है, 103 डिग्री वाला बहुत बड़ा है, और हमारा केवल 99। तो हमें चाहिए कि हम उस सामाजिक शरीर, समाज रूपी शरीर के तापमान को हम नीचे लाएं, नॉर्मल में लाएं, कम भी नहीं हो सकता। हम यदि शरीर का जो साधारण तापमान है उससे नीचे गए तो फिर आदमी और बीमार पड़ जाएगा। तो यदि सरल जीवन बिताने में हम बहुत इतना कम कर लेते हैं कि शरीर ही टिक नहीं पाएगा तो फिर भी वो ठीक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कहे मैं सरल जीवन जीना चाहता हूं, मैं केवल 1 घंटा सोऊंगा, 24 घंटे में सरल जीवन, ऊंचा विचार, और भोजन भी केवल 1 समय करूंगा, वो भी 1 चपाती खाऊंगा, बस इतना ही जीवन, तो फिर वो टिक नहीं पाएगा। तो न ज्यादा बुखार होना चाहिए, न तापमान साधारण तापमान से कम होना चाहिए, संतुलित जीवन जीना चाहिए। खैर, अंततः जीवन का उद्देश्य है कृष्ण भक्ति करना। चाहे हम शहर में रह रहे हों, हम गांव में रह रहे हों, महल में हों, जहां भी हम हों, सबसे पहले तीव्र भक्ति करने का प्रयास करें, और भक्ति करते करते हमारी अवस्था में जितना साधारण और सरल हमारा जीवन हम कर सकें उतना करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, अंतिम प्रश्न यहाँ, एक माइक यहाँ दीजिए। हरे कृष्ण।
महाराज आप बता रहे थे कि मतलब हमारे दृष्टिकोण दृष्टि में कल्पतरु मतलब भौतिक इच्छा पूर्ण करने वाला है, कोई वृक्ष है, लेकिन आप बता रहे थे कि भगवान के कृष्ण के पद कमल वो ही कल्पतरु, वास्तव कल्पतरु, उनको इसे कैसे समझते हैं?
हाँ, क्योंकि भगवान के चरण कमलों में हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। जो व्यक्ति भोग की भावना से भगवान कृष्ण के पास आएगा उसकी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है कृष्ण के पास आकर केवल भक्ति ही चाहेगा और वो भी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। कल्प वृक्ष अर्थात वो जो हमारी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण तो आदि कल्प वृक्ष हैं, तो इनका आश्रय हमें लेना चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। गौर प्रेमानंदे।